श्री श्री विठ्ठल रखुमाई की, श्री श्री राधा पंडरीनाथ भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री विठ्ठल रखुमाई की जय। हिंदी की मराठी हरे कृष्ण। सो पंडरपुर का महात्म्य हम सुन रहे हैं। हमारी मति ऐसी होती है कि जब हम सेवा करते हैं, जब धाम का प्रथम संपर्क होता है, जैसे जब नई नई शादी होती है ना, तो बहुत उत्साह रहता है, बहुत सिंसियरिटी रहती है, बहुत एकाग्रता रहती है, तो पहली मुलाकात बहुत थ्रिलिंग होती है, संवेदनशील होती है। लेकिन जब समय बीतता है ना, तो धीरे धीरे वो हम जो संवेदनशील थे पहले, जो प्रामाणिक थे, जो उत्साही थे, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। भौतिक दुनिया की स्थिति ऐसी है। भौतिक दुनिया में कैसा होता है, वो वृंदावन में जब मैं लास्ट टाइम कैंप में गया था, तब मैं इसका वास्तविक रूप में अनुभव किया कि इतनी ठंड थी कि जलाई हुई अगरबत्ती भी कुछ देर के बाद में बुझ जाती थी। इतनी वो क्या कहते हैं ना, धुंध, क्या कहते हैं, फॉग, वो इतना था और इतनी ठंड थी उसके ऊपर कि जली हुई अगरबत्ती भी कुछ देर उसके प्रभाव से बुझ जाती थी। तो जब उसको जला रहे हैं, उसकी ज्वाला निर्माण कर रहे हैं, तो जल रही है और हम रखे जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आ गए वापस तो बंद। एक अगरबत्ती कई बार जलानी पड़ती थी। तब मुझे ये विचार करने लगा मैं कि ये भौतिक दुनिया जो है, यहाँ पर हम लोग कितना भी भक्ति की ज्योति जलाएंगे, लेकिन भक्तिक दुनिया में इतनी बहुत बड़ी धुंध है कि वो उसको बुझाती रहेगी बार बार। हमको बार बार जलाना पड़ेगा और बार बार बुझाती रहेगी वो। जब नदी जब बहती है ना, तो वो नीचे की ओर ही बहती है। ऊपर की ओर अगर आपको पानी चढ़ाना है टांकी में, तो क्या करना पड़ता है, मोटर लगाना पड़ता है, पंप लगाना पड़ता है। तो किसी भी चीज़ की ऊर्ध्वगति बिना प्रयास के नहीं होती है, और बिना सहायस कुछ होना है तो क्या होना है, नीचे जाना। ये बिना सहायस होता है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। नदी में जाके आप खड़े हो जाओ, ऐसे लेट जाओ, अपने आप चले जाओगे जहां नदी ले जा रही है। तो धाम में भी हम रह रहे हैं, लेकिन धाम में भी हम कलयुग में रह रहे हैं और भौतिक दुनिया में रह रहे हैं। मंदिर भी कहां बनाए गए हैं, वो भी कलयुग में है, भौतिक दुनिया में है। दोनों चीजें सत्य हैं। इसलिए मैं देख रहा हूं, जब मैं चल के आता हूं कमरे से, तो हर एक व्यक्ति रास्ते पर थूक रहा है, हर एक व्यक्ति, और रास्ते पर हजारों लाखों थूक के निशान हैं। और हम लोग इतना चल के क्यों आ रहे हैं, ये सब लोग जो थूक रहे हैं, पंडरी क्षेत्र आ रहे हैं, जो साक्षात वैकुंठ है, जहां पंडरीनाथ वैकुंठनाथ विठ्ठल भगवान विराजमान है। और ये भूमि पृथ्वी से एक वीत भर ऊपर है, यान के रूप में है। ये सब दिव्य क्षेत्र है, बिंदु क्षेत्र है, इसमें त्रिकोण है, दिव्य त्रिकोण, ये सब सत्य है। फिर भी उसी भूमि पर हम थूक रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हमारी जो श्रवण है, हम जो सुन रहे हैं और हमारा जो आचरण है, इसमें कोई संबंध नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन। तो कैसे होगा ये कनेक्शन, कैसे होना चाहिए? ये केवल संतों के संग में होता हो सकता है। जो सत्य है और वो सत्य से अधिष्ठित हमारा जो आचरण है वो केवल संत की कृपा से ज़्यादा जुड़ सकता है। वो सत्य स्थिति जो है वो हमारे आचरण में तब उतर सकती है। जैसे हम वृंदावन में जाते हैं तो वहाँ पर बताते हैं कि ब्रजभूमि जो है वो बलराम जी का विस्तार है, मतलब जिस पर हम चल रहे हैं वो साक्षात बलराम जी है, उन्होंने अपने आप को विस्तारित किया है भूमि के रूप में। जिस पर हम चल रहे हैं तो पहले से हम आते ही मथुरा में दंडवत प्रणाम करते हैं बलराम जी को, महाराज जी अभी आप पर चलने वाले हैं, क्या करें, मजबूरी है, हवा में तो उड़ नहीं सकते। वैसे ही जिस भाव से हम पंडरी में आए हैं, कुछ लोग चलकर आए, कुछ लोग बोट से आए, कुछ लोग बस से आए, कुछ ट्रेन से आए, लेकिन सभी लोग उसी परम वैकुंठ धाम में आ रहे हैं। इसलिए ये जन जागृति करना आवश्यक है। मैं सोचा कि अभी मैं यहाँ पर बोलूँगा तो कितने लोग सुनेंगे, 50 लोग सुनेंगे, कोई बात नहीं, 50 लोगों में भी वो अंतर पड़ा तो आगे वो ज्योति आगे बढ़ेगी। एक मुझे भी कहानी याद आ रही है, मैं सुनाता हूँ आपको। कभी कभी लगता है कि क्या फ़ायदा बोल के, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो एक व्यक्ति, एक लड़का था, वो समुद्र किनारे पे चल रहा था, पश्चिम जगत की बात है। तो उधर ना वो स्टार फिश होता है, स्टार फिश वो एक सितारे की तरह होता है। तो वो स्टार फिश जो है एक एक लहरों के साथ में सैकड़ों स्टार फिश जो है वो किनारे पे फेंके जा रहे थे और वो तड़प रहे थे जिंदगी के लिए। फिर दूसरी लहर और सैकड़ों स्टार फिशों को किनारे भेज रही है। तो लड़के को देखकर दया आ गया, रे इतने स्टार फिश तड़प रहे हैं पानी के बिना। तो वो जैसे लहर आती थी उसको उठा उठा के पानी में फेंकता था, लेकिन वो शायद एक लहर के समय पर लहर आएगी, कुछ स्टार फिश को किनारे फेंकेगी, तो वो कुछ 5-10-15 को फेंक सकता था। और आ रहे थे सैकड़ों, और उतने भी दूसरे आएंगे, दूसरे में सैकड़ों आएंगे, ऐसे हजारों वहाँ जमा हो रहे थे। और कुछ कुछ 10-15 वो एक एक बार फेंक रहा था। तो एक दूसरा आदमी वहाँ पर आया, बोला अरे बच्चा तुम टाइम पास क्यों कर रहे हो, समय व्यर्थ गवा रहे हो, क्या तुम्हारे मेहनत का परिणाम है, क्या फायदा है उसका, क्या स्थिति है उसकी, क्या वैल्यू है उसका, क्या मूल्य है, क्या फर्क पड़ रहा है। हजारों वो स्टार फिश जो है वो तड़प के मरने वाले हैं और तुम कुछ 10-15 को समुद्र में फेंक रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो उसने उत्तर दिया, जिसको समुद्र में फेंक रहा हूं उसको 100% फर्क पड़ रहा है ना। परसेंटेज बहुत कम होगा आपका, 1000 में 15, लेकिन जो 15 है अंदर गए हैं वो 100% उसका यश प्राप्त हुआ है, वापस अपने जल में जीवन दान, जीवन प्राप्त कर चुके हैं। तो समझो मैंने यहां पर आपको बता दिया इस बात को कि धाम पर नहीं थूकना चाहिए। एक व्यक्ति ने भी सुना उसको और अमल में लाया तो भी यश है उसमें। और यही मेरी इच्छा है कि दूसरों को भी बताओ कि यह धाम है, भगवान विष्णु का धाम है। यहां पर स्पर्श होते ही दिंडीरव राक्षस के वरदान से सभी जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और विट्ठल भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा एक क्षेत्र है तो उसको तन से, मन से, भावना से, बुद्धि से, आत्मा से, हर तरफ उसका आदर करना चाहिए। इसको कहते हैं अनुभूति। हाँ, हर एक कार्य जो है ना हम अनुभूति के आधार पर करते हैं। हमारा क्या विश्वास है, क्या श्रद्धा है हमारी, क्या हमारा अंडरस्टैंडिंग है, उस पर हम कार्य करते रहते हैं। और हमारा कार्य जो है वो हमारे अंतर मनो जो मति है उसका एक प्रमाण है, वो प्रूफ है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, वो आपका कार्य दिखाता है। आपका कार्य आपके अंतर मन की अवस्था का प्रूफ है। तो धाम में हम क्यों आते हैं, धाम में हम हमारे अंतर मन की जो अवस्था है उसको बदलने के लिए आते हैं, उस अंतर मन की अवस्था को, चेतना को भगवान के अनुकूल बनाने के लिए आते हैं, तब जाकर हमारा धाम बहुत सफल होता है। तो हमारे मराठी में कैसे कहते हैं, आमचं पंढरपूर झालं, आमचं काशी पण झालं, आमचं नाशिक पण झालं, आमचं तिरुपती पण झालं, आमचं श्रीरंग पण झालं। झालं म्हणजे झालं, गेलं, डोकं टेकलं आणि आलं म्हणजे झालं। नळी फुंकिली सोनारे, इकडून तिकडून गेले वारे, काय फायदा त्याचा। एक कावळा सुद्धा धामात असतो. तो कहने का तात्पर्य है कि हृदय परिवर्तन बहुत आवश्यक है, नहीं तो इस कैंप में ये कथा करने की कोई जरूरत नहीं है. मुंबई में और कुछ मैं काम कर सकता हूं, लेकिन ये कथा करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि कथा करने से उम्मीद है हमारी, हमारा ये प्रयास है, हमारी ये प्रार्थना है कि सुनने वालों की मति और चेतना जो है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए. वो चेतना का परिवर्तन जो है वही भगवान को आकर्षित करता है. अन्य कोई वस्तु भगवान को उतनी आकर्षित नहीं करती है जितनी चेतना आकर्षित करती है. आप बोलेंगे हम लोग सेवा कर रहे हैं वेस्ट हो गया, वेस्ट नहीं हो रहा है वो. लेकिन भगवान का नाम क्या है? भावग्राही जनार्दन. वो दुर्योधन ने भी उनको 56 भोग का बहुत सुंदर 5 स्टार फर्स्ट क्लास सर्वोत्तम श्रेष्ठ भोजन अर्पण किया था. लेकिन भगवान क्यों नहीं गए उसके पास? क्योंकि उसकी मति दुर्मति थी, उसके मन में कपट था, उसके जो मन में पॉलिटिक्स था, भेदभाव था, आप परभाव था. इसलिए भगवान ने उसका 56 भोग श्रेष्ठ भोग जो है वो भी त्याग दिया. और जिस भोग को कोई वैल्यू नहीं है, एक केला को क्या वैल्यू होती है? साल भर निकलता है, 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपये मिल जाता है. लेकिन वो केला नहीं खाया, केले का छिलका खाया भगवान ने वहां पर जाकर. क्यों? क्योंकि विदुर और विदुर की पत्नी का जो भाव था वो बड़े प्रेम से भरा हुआ था. वो भगवान केले का आस्वादन नहीं कर रहे हैं, भगवान उस प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं केले के छिलके के माध्यम से. यहां तक कि विदुर जी लौट के आए तो विदुर जी ने अपने पत्नी को बुला रही, मूर्ख औरत क्या कर रही हो, भगवान को तुम केले के बदले में केले का छिलका खिला रही हो, कैसी पागल औरत हो आप. भगवान कह रहे हैं श, डिस्टर्ब मत करो, जो चल रहा है वो चलने दो. वो प्रेम अर्पण कर रही है, मैं प्रेम स्वीकार कर रहा हूं, केला या छिलका कोई मतलब नहीं उसका. तो हमारी सेवा चाहे वो छिलका हो या केला हो तब महत्वपूर्ण होता है जब उसके अंदर प्रेम की भावना होती है. और वो प्रेम की भावना तब आती है जब हम सुनते हैं. सबसे पहला परिवर्तन श्रवण से होता है, श्रवण के बाद में वो विचार में बदलता है जो हमने सुना है, और विचार जो है वो फिर वाचा में बदलता है, हम उसके बारे में बोलते हैं, और वाचा में जो आता है वो क्रिया में बदलता है, और वो क्रिया जब अपने मति के अनुकूल होगी, जैसे हमने सुना है जो परिवर्तित मति हमारी है वैसे हमने सुना है, तो वो जो क्रिया है जो प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक भक्ति पूर्वक हम करते हैं वो क्रिया भगवान को पसंद आती है, भगवान को भाती है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं. इसलिए ये सुबह शाम का श्रवण जो है मेरे लिए कहना आपके लिए सुनना बहुत आवश्यक है. ये मत समझना कि मैं कह रहा हूँ इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ, आप सुन रहे हैं इसलिए आप कनिष्ठ हो, ऐसे नहीं है. मैं मेरी सेवा कर रहा हूँ, आप आपकी सेवा कर रहे हो, ये मेरे लिए शुद्धिकरण है, आपके लिए शुद्धिकरण है. अभी आज सवेरे से और वरिष्ठ भक्त आएंगे तो मैं वहाँ बैठूंगा, सुनूंगा, वो कहेंगे मैं सुनूंगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली कोई श्रेष्ठ कोई कनिष्ठ नहीं है, सबके भाव की परीक्षा है ये. कौन से प्रकार का भाव हम लेकर आए हैं, कौन से प्रकार का भाव यहाँ निर्माण कर रहे हैं, कौन से प्रकार का भाव भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं, भगवान से मिले या ना मिले, दर्शन मिले या ना मिले, लेकिन किस प्रकार का भाव भगवान के चरणों में अर्पण करने के लिए आए हैं वो भगवान देख रहे हैं. इसलिए मति मति पर ध्यान रखो, चेतना पर ध्यान रखो. और बार बार धाम की एक एक कथा हम सुनते जा रहे हैं तो हमारी धाम के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ जाता है, उसमें वृद्धि होती है, इसलिए इसको सुनाते जाते हैं. हो सकता है दिन में कुछ हो गया, किसी से बातचीत हो गई, किसी से झगड़ा हो गया, कुछ भेदभाव वाद विवाद हो गया, तो शायद मति बदल सकती है. फिर सुबह उसको पॉलिश करते हैं श्रवण के माध्यम से. धाम में कई अच्छे बुरे अनुभव आ सकते हैं, कोई धक्का लग सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है, मारामारी हो सकती है, कोई अच्छा बुरा अनुभव आ सकता है. धाम आपकी परीक्षा ले रहा है, हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आए हैं. हमारी बंबई वाली और शहरों वाली भौतिकता को लेकर यहाँ पर के वातावरण में उसको घोल मिलने के लिए नहीं आए हम लोग. हमारी भौतिकता की जो चेतना है बंबई वाली उसको शुद्ध करने के लिए यहाँ पर आए हम लोग. इसलिए तीर्थ यात्रा जो है वो कोई पिकनिक नहीं है. पिकनिक हम लोग खाना पीना खाते हैं, मजा करते हैं, नाचते कूदते हैं, खुद के आनंद के बारे में सोचते हैं, मुझे क्या मिलेगा पिकनिक में, मैंने इतने पैसे दिए हैं मुझे क्या मिलेगा, मजा तो आया ही नहीं, क्या फायदा है, अगली बार हम लोग माथेरान जाएंगे, ऐसे पिकनिक का भाव होता है. और तीर्थ यात्रा का भाव क्या होता है? तीर्थ यात्रा में हम लोग केंद्र स्थान में नहीं होते, तीर्थ यात्रा में भगवान केंद्र स्थान में होते हैं, भगवान के भक्त केंद्र स्थान में होते हैं. उनको कितनी खुशी मिलेगी हमारी सेवा से, भगवान को कितनी संतुष्टि मिलेगी, वो देखने के लिए, वो करने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पर। तो पूरा एक्टिविटी एक ही है, ट्रेन से बैठ के आ रहे हैं, पैसा भर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, उतर रहे हैं, सब कुछ वही एक्टिविटी लगता है, लेकिन उसका उद्देश्य खुद का स्वार्थ पूर्ति है, इसको पिकनिक कहते हैं। और उसी एक्टिविटी, वही कार्यकलापों का उद्देश्य अगर भगवान और उनके भक्तों की संतुष्टि है तो वो तीर्थ यात्रा हो जाती है। तो भगवान जैसे हम कह रहे हैं, हमको भी समझ में आ रहा है, इसमें क्या फर्क है? तो क्या भगवान को समझ में नहीं आता होगा? वो तो सब ज्ञान के उद्गाता हैं, वहीं से ज्ञान अनुभूतियां निर्माण होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके पीछे क्या मति है, ये वो जानते हैं, उसी को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। इसलिए हम बार बार भगवान के विषय में चिंतन, गुणगान, कीर्तन, प्रवचन करते रहते हैं, ताकि हमारा भटका हुआ मन बार बार वापस उसी जगह पर आए, योग्य जगह पर आए, जिस पर आना चाहिए, जिसमें हमको यहाँ रहना है। जितना भी समय भगवान ने दिया है, यहाँ पर प्राप्त हुआ जो समय है, कुछ क्षण है, कुछ मिनट है, कुछ घंटे हैं, कुछ दिन है, बहुत ही अमूल्य और कीमतवान है, वो अत्यंत मूल्यवान है। क्योंकि कल मैं यहाँ पर बैठ के कथा सुन रहा था, कीर्तन सुन रहा था, उसमें कह रहे थे, बहुत सुकृतांची जोड़ी म्हणून विठ्ठल आवडी। तुम्ही यहाँ से जाते वक्त मैं पूरा चिंतन करते गया उसके ऊपर, बहुत सुकृतांची जोड़ी म्हणून विठ्ठल आवडी, मतलब पुराने जमाने के हमारे बहुत सारे पुण्य हैं, सुकृत यानी पुण्य, अच्छे कार्य जो हमने किए हैं, वो इस तरह उसका स्टॉक है, उसके वजह से अभी विठ्ठल थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है, म्हणून विठ्ठल आवडी ना। आपली अवस्था कशी आहे? बहुत दुष्कृतांची जोडी म्हणून विषय आवडी। हमारे इतने सारे पाप कर्म है, इसलिए हमको विषय अच्छे लगते हैं, भोग ही अच्छा लगता है, पाप कर्म अच्छे लगते हैं, बुरा भला बोलना, अहंकार अच्छा लगता है, उसी को हम बना देते हैं, उसकी परवरिश करते हैं। तो ये दुष्कृतों को नष्ट करके सुकृतों को जोड़ना बहुत आवश्यक है, उसके लिए मनुष्य जीवन दिया है। बाकी जानवरों के हाथ में वो चाबी नहीं है, पाप कर्मों को बदल कर पुण्य कर्म बदले और फिर भगवान के चरणों को प्राप्त करें। किसी जानवर पर किसी संत की कृपा हो गई तो डायरेक्टली उसका उद्धार हो सकता है, लेकिन अपने आप में वो जानवर में भगवान की प्राप्ति करने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन मनुष्य में है। संतों का आश्रय लेके वो अपनी इच्छा से, अपने निश्चय से, अपने संकल्प से भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो दुष्कृत तो सबके है, हम सब लोग पाप लेके आए, हम लोग पाप लेके आए, इसका प्रूफ क्या है? ये शरीर धारण करके यहाँ बैठे, यही तो प्रूफ है उसका। अगर हमारे अंदर पाप का संचय नहीं होता, स्टॉक खत्म हो गया है, तो हम लोग यहाँ होते ही नहीं, यही इसका प्रूफ है। मरीज बीमार है, उसका प्रूफ क्या है? अरे वो हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर बीमार नहीं होता तो हॉस्पिटल में एडमिट क्यों होता, वो घर पे रहता अपने आराम से। अस्पताल में है, यही प्रूफ है उसका कि वो बीमार है। ये दुनिया भी एक अस्पताल है, सब लोग बीमार लोग यहाँ पर आते हैं। दुष्कृतों का बहुत बोझ लेके आते हैं, उसका परिणाम भोगते रहते हैं। तो हम लोगों को बहुत सुकृताची जोड़ी, हाँ, जोड़ायला सुरुवात करा सुकृता। अजूनही वेळ गेलेली नाही आहे, भरपूर वेळ बाकी आहे, भगवंताच्या कृपेने खूप वेळ आहे। तर ती सुकृत जी आहे, ते सर्वात श्रेष्ठ सुकृत कुठचं आहे? ते म्हणजे भगवत सेवा आणि भगवंताच्या भक्तांची सेवा। हे सुकृत जेव्हा गोळा करू, तेव्हा हळूहळू विठ्ठल आवडायला लागेल, कृष्ण आवडायला लागेल, आणि तो जितका आवडेल तेवढा जीवन धन्य आहे आपलं। तर ते कृष्ण आवडायला हवा म्हणून इथला तुम्हाला इथली वेळ दिली गेलेली आहे, काही तास, काही क्षण, काही दिवस, हे भगवंताची अनंत कृपा आहे। एक तर आपल्या सत्कृताची ही जोडी आहे, परिणाम आहे त्याचा, आणि एक कोणा संताची कृपा असेल आपल्यावर, कोणीतरी आपल्याला इथे धक्का दिलेला आहे या बाबा आतमध्ये। तर कृपेमुळे आपण आले असू किंवा आपल्याच पुण्यकर्माने आले असू, त्याचा ॲनालिसिस करायची गरज नाही, त्याचं विश्लेषण करण्याची गरज नाही। आलो आहोत, आता करायचं काय ते विचार करायला पाहिजे आपल्याला। तर म्हणून मी एवढं स्वतः प्रस्तावना का दिली आजच्या कथेला, की कथा पण केवळ कथा आणि मनोरंजनच्या रूपाने ऐकायला नाही पाहिजे। कथा भी केवळ ऐसा मनोरंजन, अच्छा लग रहा है, हाँ प्रभूजी ने बहुत जोक बताया, बहुत हंसे आया, क्या कथा किया आज, वाह। तो कितने जोक बताए, बीच में कितना मनोरंजन हुआ, इसमें कथा का यश और अपयश वो गिनते रहते हैं। लेकिन कथा का यश अपयश कितना आत्मा में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति निर्माण हो गई उसके ऊपर रहता है। इसलिए जोक वोक को भूलो, उसके सार जो है उसका ग्रहण करो। सार यही है, भगवान मति, भगवान के विषय में चिंतन, भगवान के विषय में मति, ये प्राप्त होगा तो हमारी कथा सफल है। हमारी कथा का प्रयोजन मनोरंजन नहीं है, नाम करना चाहते हैं। मनोरंजन दुनिया में बहुत सारा है, और कथा का बीच का जो मनोरंजन है वही क्षणभंगुर, वो भी क्षणभंगुर है, याद रखना इस बात को। कथा में किया हुआ जो मनोरंजन है वो भी क्षणिक है, नश्वर है, खत्म होने वाला है। कथा का संदेश जो है वो चिरंतन है, तो इस संदेश को ग्रहण करना चाहिए। तब यहां आना, यहां बैठना, यहां सुनना, यह समय जो आप दे रहे हैं वो सब सफल है। देखिए, आपके सबके समय का एक मूल्य होता है कि नहीं? आप सब छुट्टी निकाल के आए, कुछ लोग रिटायर है, लेकिन आपके समय का एक मूल्य है। एक घंटे का कितना वैल्यू है आपका? प्रधानमंत्री का भी समय का एक मूल्य है, वैसे आपका भी समय का मूल्य है। वो छोटा मोटा मूल्यवान समय जो है वो आप सब लोग यहाँ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और उसका परिणाम आप मनोरंजन के रूप में देख रहे हैं, तो आपका समय व्यर्थ है। और ये समय आप जो दे रहे हैं उसका परिणाम अगर मति में परिवर्तन है तो आपका समय जो आपने इन्वेस्ट किया है वो सफल है। तो आइए, अंतिम वाक्य बता रहा हूं आपको कि यहां का हर क्षण का समय आप खुद ही अपने प्रयास से, अपने मति से सफल करें, उसका जो वास्तविक इच्छित वांछित जो परिणाम है वो प्राप्त करें। यही मेरी विट्ठल रखुमाई के चरणों में आपके लिए प्रार्थना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के हमारे कथा का विषय है चंद्रभागा देवी, चंद्रभागा मैया की। तो त्रिपुर नाम का एक भयंकर राक्षस था। त्रिपुर यानी कि तीन पुर, पुर का मतलब क्या है? जिसको अच्छी तटबंदी बनाई गई है, ऐसा गांव या शहर, ऐसा मुल्क, ऐसा कह सकते हैं। अभी राक्षस भी बड़े अजीब होते हैं, कुछ लोग अदृश्य रूप में रहते हैं, रूप बदल लेते हैं, कभी अदृश्य हो जाते हैं, कभी हवा में उड़ते हैं, कभी सूक्ष्म हो जाते हैं, कभी महान हो जाते हैं, अनिमा लगीमा महिमा, इस प्रकार के अनेक सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। ये राक्षस तो था, वो ना पुर के रूप में उसने अपना रूप धारण कर लिया, पुर यानी कि शहर बन गया वो, और कैसा शहर? पृथ्वी पर नहीं, आकाश में अपने आप को स्थित किया, और एक ही राक्षस तीन पुर के रूप में आकाश में विराजमान हो गया, और वो पुर के खिड़कियों से बाण निकल रहे हैं, वो सब देवताओं को समाप्त कर रहे हैं। पता नहीं कौन बाण चला रहे हैं, किसको हम लोग प्रत्युत्तर में बाण चलाएं। अभी आप बाण चला रहे तो मैं आप देख रहा हूं आपको, तो आपको बाण चला सकता हूं आपका नेम लगाकर, लेकिन आप दिख ही नहीं रहे, यहां से बाण आ रहे, वहां से बाण आ रहे, ऊपर से आ रहे, नीचे से आ रहे। इस प्रकार का भयंकर आतंक उसने पुर के रूप में अपने आप को बनाकर देवताओं के लिए हाहाकार मचा दिया उसने। वह देवताओं के एक अच्छा गुण है, कुछ भी संकट आता है ना तो क्या करते हो? भगवान विष्णु के पास जाते हैं, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, कुछ कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन तुरंत ही विष्णु का आश्रय ग्रहण करते हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये नम्रता की एटीट्यूड भी है। नम्रता की एटीट्यूड क्यों है? अरे मैं क्यों उनके पास जाऊं, मैं सक्षम हूं, मैं खुद ही करूंगा इसको, एक प्रकार की प्रवृत्ति है। और दूसरी प्रकार की प्रवृत्ति है, नहीं इतना सक्षम नहीं हूं मैं। नम्रता के वश आप सोचते हो कि नहीं, मुझे अभी भगवान के आश्रय लेने का समय आ गया है, ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बहुत मार खा चुका हूं। तो सब लोग विष्णु के पास गए, तो विष्णु ने कहा कि शंकर भगवान आपके संकट का निवारण करेंगे। तो शंकर भगवान को आह्वान किया, उनको त्रिशूल दिया, लो इस त्रिशूल के सहारे त्रिपुरारी त्रिपुर का राक्षस का वध करो, त्रिपुरासुर का। तो भगवान शंकर यहां पर आए, इस भूमि पर। इस भूमि पर किसका वास नहीं है बताइए आप? ब्रह्मा के नेतृत्व में सभी देवताओं का यहां निवास है, सभी देवता चिरंतन रूप में यहां रहते हैं। चंद्रभागा के नदी के जितने खड़े हैं, जितने पत्थर है, शिलाएं हैं, उसके रूप में वृक्ष वेली के रूप में यहां पर सब देवता रहते हैं और भजन करते रहते हैं। हम लोग तो यहां वहां नजारा देख रहे हैं, हाँ, कोई 10 रुपए का पाउच बेच रहा है, कोई बैग बेच रहा है, कुछ बेच रहा है, सब लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कितना फोकस है उनका उसके अंदर। लेकिन फोकस यहां पर भगवान पे होना चाहिए। ऐसे भगवान पर फोकस करने के लिए अनंत देवता ब्रह्मा के नेतृत्व में यहां पर चिरंतन निवास करते हैं। तो यहां पर आए शिव जी भगवान, एक पैर उन्होंने चंद्रभागा के किनारे रखा, एक पैर उन्होंने नंदी पर रखा और ऐसे अनोखे पोज में, ऐसे अनोखे आसन में उन्होंने त्रिपुरासुर के साथ युद्ध किया, और बहुत घनघोर युद्ध हुआ। ऐसा नहीं कि भाई त्रिशूल लिया भगवान का और छोड़ा तो मर गए, वो ऐसा नहीं। राक्षस भी बहुत भयंकर होते हैं, बहुत घनघोर, अति भयंकर, पीड़ा देने वाला, सबको भय उत्पन्न करने वाला तीव्र युद्ध होने के बाद में त्रिपुरासुर का वध हो जाता है। तो इसलिए शंकर का नाम क्या पड़ा? त्रिपुरारी, त्रिपुर अरी यानी शत्रु, त्रिपुर राक्षस को मारने वाले त्रिपुरारी भगवान शंकर जी। शंकर भगवान की, शंकर भगवान कृष्ण भगवान के परम भक्त हैं, तमोगुण के अधिष्ठाता इंचार्ज हैं, वो भगवान की बड़ी दिव्य सेवा करते हैं। शंकर जैसा भगवान का कोई भक्त नहीं है। वैष्णवानान यथाशंभु, परम वैष्णव कहा गया उनको, स्वयं भगवान बताते हैं कि मेरे परम वैष्णव है। श्रीमद् भागवत में उनका उल्लेख आता है परम वैष्णव के रूप में। तो जब ये लड़ रहे थे तब उनको क्या हुआ, श्रम हुआ। वो श्रम की वजह से उनको पसीना आया, उसको पसीना हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि पसीना हमारा तुम्हारा होता है, हमारे शरीर में आता है उसको पसीना कहते हैं, जिसको बदबू आती है बहुत, उसमें कीटाणु बढ़ते हैं और सामने वालों को पीड़ा देते हैं, वो आपको तो देते ही है, आपके संपर्क में जो आएगा वो भी पीड़ा प्राप्त करता है, उसको पसीना कहते हैं। लेकिन स्वेद जो है उसका दिव्य अर्थ है, दिव्य स्वरूप जो उसका है काउंटर पार्ट, वो स्वेद है, और वो स्वेद जब निकलता है देवताओं के शरीर से तो उसको सुगंध आती है। ऐसा दिव्य स्वेद शंकर जी के रोम रोम से निकला, एकत्रित हो गया, प्रवाहित हो गया, नदी का रूप धारण किया उसने। और वो ये जो युद्ध हुआ था ना, वो कहते हैं कि इस भूमि में था, और ये भूमि भीमा नदी, भीमा शंकर जो पर्वत है, आज कहां पर है वो? पूना के आसपास है ना, वहां पर युद्ध हुआ था और वहां ये नदी का आरंभ हुआ, और वो भयंकर ध्वनि करते हुए, गर्जना करते हुए, वो नदी जो है वो भी बिंदुओं से एकत्रित होकर नदी रूप धारण किया है, वो भयंकर गर्जना करते हुए लहरों के साथ में वो पंडरपुर, पुंडरिक वन, तिंडिर वन, दिंडिरव वन की ओर से और प्रवाहित होने लगी। वो ध्वनि इतना भयंकर था कि यहाँ के जो निवासी थे वो भयभीत हो गए, उनको लगा प्रलय आ रहा है, बाप रे जीवन समाप्त हो रहा है, इतना भयंकर ध्वनि पहले कभी सुना नहीं था। तो मैंने आपको पहले दिन जो यहाँ पर थे उनको बताया था कि ये क्षेत्र की चार दिशाओं में चार भगवान बैठे हुए हैं, उसके अंतरद्वार में भी चार देवी देवताएं बैठे हुए हैं, और नैऋत्य दिशा में यानी कि साउथ वेस्ट में काल भैरव जी विराजमान हैं, जो यहाँ के क्षेत्रपाल हैं, क्षेत्रपाल, दिक्पाल, वन्य देवता, ग्राम्य देवता, ऐसे कई देवताएं होती है, जो एक भगवान का एक व्यवस्था है वो लोगों को सहायता करने के लिए। तो यहाँ के काल भैरव क्षेत्रपाल को धाम में भी भगवान के विषय में श्रवण करना आसान नहीं है, वहां पर भी बाधाएं आती रहती हैं। आपकी एकाग्रता की परीक्षा है वो, कि आपका ध्यान उस म्यूजिक पर है कि कथा पर है, इसकी परीक्षा करने के लिए बीच में भगवान कुछ परीक्षाएं, टेस्ट भेजते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्षेत्रपाल भैरव को उन्होंने आह्वान किया, सब जो धामवासी भाग के गए, महाराज बचाइए, आप क्षेत्रपाल हो। उन्होंने कहा डरो मत, मैं आ रहा हूँ, अपना हाथ में बड़ा दंड लेकर, दिव्य शरीर में लेकर काल भैरव जी यहाँ पर आए, और जैसे खड़े हो गए ना तो उनके उपस्थिति मात्र से नदी को डर लगने लगा, उसका नाम था भीमा नदी, भीमा शंकर पर्वत से आ रही ना वो, तो भीमा नदी भयभीत हो गई, क्योंकि वो भी व्यक्ति है, उसका जन्म हुआ ना उस समय, शंकर जी के रोम रोम से बिंदु रूप में स्वेद निर्माण होकर वो नदी का जन्म हुआ, भीमा नदी का। तो भीमा नदी भयभीत होकर पांडवों को पुकारने लगी, इस धाम के भगवान को पुकार, भगवान बचाओ मुझे, पता नहीं ये कौन व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, शायद मेरा मृत्यु का कारण बनेगा। तो वहां पर पांडुरंग भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने नदी को बताया, तू निशब्द होकर चली जा, काल भैरव तुम्हें कुछ नहीं करेगा। उसी समय नदी निशब्द हो गई, यानी आवाज, ध्वनि, भयभीत करने वाला ध्वनि शांत हो गया। पात्र तो विशाल था, अभी भी देखो कितना बड़ा विशाल पात्र है, जब बस से आते हैं हम लोग वो ब्रिज से, हे बड़ा विशाल पात्र है, तो अभी तो कलयुग का स्वरूप है वो, उस समय कितना विशाल पात्र होगा। लेकिन फिर भी शांत होके चले गई, आज भी वो एक कण का भी ध्वनि यहां पर उत्पन्न नहीं करते, आप जाइए उसके किनारे, बाढ़ भी आती कभी कभी, ध्वनि बिल्कुल नहीं होता है, लहरों की ध्वनि बिल्कुल भी नहीं होती है। ये उसकी विशेषता है, क्योंकि पांडुरंग भगवान ने उसको आदेश दिया हुआ है निःशब्द होकर चलती रहना, यहां पर तो चल रही है, ये उसकी कथा है। चंद्रभागा का इतना महात्म्य है कि चंद्रभागा के संपर्क में आने से अनंत जन्म जन्मांतर के जो संचित है वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। और हम जैसे लोग यहां पर आते हैं और यहां पर आकर भी अपराध करते हैं, कुछ माया में अपने आप को लिप्त कर लेते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं, कुछ कटु वचन बोलते हैं, कुछ विवाद करते हैं, हाँ सोचते हैं कि अरे ये वारकरी क्या है, अरे तो ऐसे गरीब लोग हैं, इनको क्या है, इनको डांटना चाहिए। लेकिन हम लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूँ, कल भी बताना चाहता था कि कैंप हमने लगाया है, कैंप का अनाउंसमेंट हमने किया है, इसलिए वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप यहाँ पर कैंप का बोर्ड निकाल दो, बोलो कि यहाँ पर होटल है, तो होटल के यात्री रहने को आएंगे। तो हमने यहाँ पर आकर कैंप का संकल्प किया है, निश्चय किया है, एडवर्टाइजमेंट किया है, लोगों को लेकर आए, दवाई का इंतजाम किया है, आपने अनाउंसमेंट किया है इसलिए मरीज यहाँ पर आए हैं। तो उनको ये आप ऐसा मत समझना कि ये बहुत थर्ड क्लास लोग हैं, उन पर चिल्लाना चाहिए। हमने उनकी सेवा का संकल्प किया है और सेवा देने के लिए वो आ रहे हैं, उनके साथ में आदर से व्यवहार करो, उन पर चिल्लाओ मत। हो सकता है वो गांव के होंगे, थोड़ा सा इतने संस्कृत नहीं होंगे, सुसंस्कृत इतने कल्चर्ड नहीं होंगे हमारे जैसे, हम लोग अपने आप को बहुत पॉलिश समझते हैं, लेकिन वो सीधे दिल वाले लोग हैं, हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिल वाले लोग हैं। तो अगर आपको कोई सेवा दी होगी, नाम लिखवाने की, लाइन लगाने की, इनको ये करने की, वो करने की, वो शायद आपके अनुसार नहीं बर्ताव करते होंगे, उन पर आप चिल्लाना नहीं, वो हमारे सेव्य है, सेव्य यानी जिनकी सेवा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, और जिनकी सेवा करने आए हैं उन पर ही चिल्ला रहे हैं, उनके लिए कटु वचन, कठोर वचन बोल रहे हैं, तो हमारे अंदर कोई गड़बड़ है सॉफ्टवेयर में है ना, ध्यान में रखना उस बात को। वृंदावन में भी हम बताते हैं कैंप में कि जब ब्रजवासी की सेवा हम करते हैं, कैंप लगाते हैं, तो कैंप में हमने कैंप लगाया है, हमने कैंप का अनाउंसमेंट किया है, आओ आओ, आँखों का तकलीफ जिसको है वो लोग आओ, ऐसे हम लोग उनको अनाउंसमेंट करते हैं, और जब वो आते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अरे आपने बुलाया इसलिए हम आए हैं, आप नहीं बुलाते तो नहीं आते, कहीं और चले जाते, आपने बुलाया, अनाउंसमेंट किया, गाँव में गाड़ी भेजा, लाउडस्पीकर भेजा, पत्रक लगाए, छापे छाप दिए उसको उधर चिपकाया, इसलिए आ रहे हैं, और जब आपके दरवाजे पे सेवा लेने आ रहे हैं तो आप हमारे साथ कटु व्यवहार कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना चाहिए, हर चीज में मति की आवश्यकता है कि किस भावना से हम सेवा कर रहे हैं। ये वारकरी लोग जो है ये पंडरपुर के क्षेत्र में चलकर आ रहे हैं, तपस्या करते हुए आ रहे हैं, हमने कोई तपस्या नहीं किया है, मैंने तो नहीं किया है, लेकिन इनकी सेवा करने के लिए आए, क्योंकि इनकी सेवा करने से पांडुरंग विट्ठल प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा दृष्टि हमारे पर गिरेगी और हमारा कल्याण होगा, उनका पैर का पट्टी लगाया जाएगा लेकिन हमारे आत्मा का कल्याण हो जाएगा, इस भावना से हम लोग यहाँ पर आते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं कह रहा था कि अब यहाँ पर हम लोग गलती करते हैं जाने अनजाने में, कुछ अज्ञान के कारण करते हैं, कुछ जानबूझ के करते हैं, कुछ गर्व से करते हैं, कुछ घमंड से करते हैं, लेकिन जब दुष्कृत्य करते हैं तो उन दुष्कृत्यों को जो हमने धाम में किया है उसको वज्रलेप कहते हैं। आपने कितने लोगों ने सुना है वज्रलेप के बारे में, शायद सब लोग नए हैं, जब मैं उस दिन प्रवचन किया था उसमें कुछ लोग थे। वज्रलेप, इस कंसेप्ट को आप समझो, वज्रलेप वो होता है जो धाम में अपराध करते हैं उसको वज्रलेप कहते हैं। जैसे आपके ऊपर डांबर लगाया जाए तो निकालना कितना मुश्किल हो जाएगा, अगर वो रंगपंचमी का रंग लगाया जाए तो थोड़ा स्नान करके निकल जाएगा, कुछ तेल से निकल जाएगा जो ड्रामा में लगाते हैं ना मेकअप, कुछ ऑयल पेंट होता है उसको, और कुछ चीज़ से निकल जाएगा, लेकिन कोई गलती से आपको डांबर लगा दिया तो और चिपक गया आपको, तो आपको चमड़ी के साथ ही निकालना पड़ेगा उसको, वैसे ही कुछ वज्रलेप होता है। बाकी सारी चीज़ें बहुत क्या कहते हैं उसको, व्रत व्रत करने से निकल जाते हैं, लेकिन वज्रलेप ऐसे आसानी से नष्ट नहीं होता है। और पांडुरंग क्षेत्र के महात्म्य में लिखा है कि चंद्रभागा नदी में आप प्रवेश करोगे, उसके जल का स्पर्श करोगे, उसमें आचमन करोगे, उसमें स्नान करोगे, तो आपका वज्रलेप भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए पहले वज्रलेप का काम मत करना, और किया है तो वहां जरूर स्नान करना, सेवा होने के बाद में जरूर जाना, 15 मिनट में स्नान करके आना, और ध्यान रखना कि चंद्रभागा में स्नान करते हुए मनोरंजन के भाव से मत जाना कि चलो जल में, जल में क्या होता है, जल का एक परिणाम होता है, जल का स्पर्श होते ही एकदम आदमी प्रफुल्लित हो जाता है। कितने भी आदमी उदास होगा ना, जल में प्रवेश करते एकदम मूड में आ जाता है पूरा, थोड़ा खेलने की इच्छा होती है, स्विमिंग करने की इच्छा होती है, पानी उछालने की इच्छा होती है। लेकिन ये बहुत पवित्र नदी है, इसके अंदर खेलना नहीं चाहिए, आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। वैसे भी हमारे जो पापी पैर है उसके अंदर हम डाल रहे हैं अंदर जाने के लिए, स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, लेकिन ये पश्चाताप की भावना होनी चाहिए कि मैं इतना पापी व्यक्ति प्रवेश कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करना है देवी, मैं आपके अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, पापों से भरा हुआ हूँ मैं, आपके आश्रय लेकर पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। और पापों से मुक्त क्यों होना चाहता हूँ, क्योंकि पाप मेरे भगवान की भक्ति में बाधा देते हैं। बंद करो इसको। पापों से और पापों के फलों से भगवान की सेवा में अनंत बाधाएं आती हैं, इसलिए मैं पाप से मुक्त होना चाहता हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये पाप का बोझा अगर निकल जाए तो मेरी भगवान की ओर भागने की गति जो है वो बढ़ेगी, बढ़ जाएगी, द स्पीड विल इंक्रीज। अगर आपको 100 किलो का बोझा दिया, बोला यहाँ से वहाँ जाओ, 2 घंटे में पहुँच जाओगे, बोझा निकाल दिया तो 5 मिनट में पहुँच जाओगे, वही इसीलिए हम बोझा निकालना चाहते हैं। तो चंद्रभागा के अंदर प्रवेश करने से हमारे ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आदरपूर्वक प्रवेश करना उसके अंदर, मजा के लिए प्रवेश मत करना, टाइम पास करने के लिए, फ्रिवॉलिटी कहते ना, उच्छृंखल व्यवहार से अंदर प्रवेश मत करना, सम्मानीय भाव से प्रवेश करना। वो नदी बिचारी अनंत लाखों करोड़ों लोगों के पाप लेने के लिए यहाँ बह रही है, सब लोगों के पाप को स्वीकार कर रही है ना, और फिर भगवान के चरणों में जाकर अपने आप को विलीन कर देती है उन पापों को शालन करने के लिए। लेकिन हमारे लिए कोई अच्छा कार्य कर रही ना, जैसे माता पिता हमारे दुखों को, कष्टों को स्वीकार करते हैं कि नहीं, खुद उसको भोगते हैं, बुखार तो बच्चे को आ रहा है लेकिन कष्ट माता को भी होता है कि नहीं, तो भी शेयर कर रही है ना अपने दुखों को। तो चंद्रभागा की अनंत कहानियां हैं, उसमें एक कहानी ऐसी है कि गौतम ऋषि का नाम आपने सुना है क्या, गौतम ऋषि सप्तऋषि में से एक है, वो बहुत ही पवित्र, बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही शक्तिशाली ऋषि हैं। तो गौतम ऋषि का विवाह अहिल्या से हुआ, अहिल्या से हुआ ना, उसकी कथा ये थी कि उसका विवाह का प्रण लगाया गया कि जो कोई पृथ्वी की प्रदक्षिणा करेगा उसका विवाह उसके साथ हो जाएगा। तो इतनी परम सुंदरी थी वो, इतनी परम सुंदरी थी कि देवता भी उतर आए जमीन पर उसके साथ में विवाह करने के लिए, और सब लोग रेस में लगे हुए हैं, मैराथन पृथ्वी की रेस में। तो उस समय गौतम ऋषि ने क्या किया, कामधेनु गाय का प्रदक्षिणा किया, और तुरंत ब्रह्मा जी ने उसका अहिल्या के साथ विवाह किया। विवाह हो गया, बहुत समय भी बीत गया, उसके बाद सब लोग दौड़ के रेस में पूरे आ गए, मैं पहला आ गया, मैं पहला आ गया। तो उन्होंने कहा विवाह तो हो गया, बोले ये तो अन्याय है हमारे पर, ऐसे कैसे हो सकता है, हम सब लोग इतना मेहनत किया, आपने कहा था पृथ्वी की प्रदक्षिणा का रेस है, हमने सबने प्रामाणिक साथ उसके साथ भाग लिया, और आपने उसके पहले ही कोई वसीला लगाकर उसका विवाह कर दिया। उन्होंने कहा गाय के अंदर सारे ब्रह्मांड बसे हुए हैं, पृथ्वी क्या, जिस ब्रह्मांड में पृथ्वी है वो भी इस गाय के अंदर है, वो ब्रह्मांड भी उसके अंदर है। तो सब लोग शांत हो गए। फिर गौतम ऋषि का विवाह अहिल्या से हुआ, और वो तपस्वी ऋषि थे तो वो जंगल में अपने कुटिया में रहने लगे। तो देखो ऐसा है ना, जैसे वो द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ था ना, बहुत लोग आए थे लेकिन अर्जुन जुद गए, सबके मन में रह गए, अरे द्रौपदी मुझे प्राप्त होती तो कितना अच्छा था, मन में तो रहता है ना वो, और वो द्वेष था जो मुझे नहीं प्राप्त हुई किसी को और हुई, वो कई लोगों के जीवन में बार बार दिखाई पड़ता है, वो अपने पुराने जो नहीं मिला वो चीज़ उसके वजह से ईर्ष्या करते रहते थे। जब सीता का स्वयंवर हुआ तो रावण भी उसमें आया था, बहुत लोग आए थे उसके अंदर। तो राम को सीता प्राप्त हुई तब भी सब लोगों को द्वेष जो है मन में चलता रहा। तो वैसे इंद्र भी रेस में थे, वो पृथ्वी की रेस में, उनको प्राप्त नहीं हुए अहिल्या, तो मन में तो वो था भाव, अरे ऋषि को प्राप्त हुई मुझे नहीं प्राप्त हुई। तो उसका सौंदर्य देखने के लिए घूमते घूमते एक बार आ गए। वो देवाहुति रानी भी ऐसी ही थी, वो जब अपने छत पर गेंद खेलती थी ना, तो उसको केवल देखने के लिए स्वर्ग से देवता विमान पर बैठ के आते थे, और विमान में बेहोश होकर गिरते थे उसका सौंदर्य देखते हुए। पृथ्वी की कन्या है वो, लेकिन सौंदर्य क्या था उसका। तो जब आए तो वापस ध्यायतो विषयान पुंसा, जिस विषय का ध्यान कर रहे हैं वो दूर है तब तक ठीक है, लेकिन वो विषय आंखों के सामने आए तो और वासना प्रदीप्त हो जाती है। तो क्या हुआ, वापस भोगने की इच्छा हुई। किसी और की पत्नी है, वो ऋषि की पत्नी है, उसकी ओर देखना भी नहीं चाहिए बुरी नजर से, फिर भी देख ही नहीं रहे, कुछ प्लान बना रहे, योजना बना रहे, पाप योजना बना रहे। गौतम ऋषि का रूप धारण करते हैं, क्योंकि देवताओं के पास सिद्धियां होती है, उसका दुरुपयोग करते हैं। हमारे पास शक्ति होना अच्छी बुरी बात नहीं है, शक्ति का दुरुपयोग करना बहुत बुरी बात है। शक्ति का सदुपयोग भगवान की सेवा में करना, उस शक्ति का सही उपयोग है, सार्थक है शक्ति को। लेकिन यहां दुरुपयोग किया जा रहा है वासना की पूर्ति के लिए, ऋषि का अपमान करने के लिए, ऋषि को विश्वासघात करने के लिए। वो गौतम ऋषि का रूप धारण करके कुटी में प्रवेश किया, मानो गौतम ऋषि जो तपस्या करने गए हैं, तपस्या करके लौट के आ रहे हैं। इस भाव से प्रवेश किया तो अहिल्या ने सेवा की, चरण धोए उनके, उनकी आदर सम्मान से चरण दबाए, अंत कक्ष में गए और गौतम ऋषि का रूप धारण किए इंद्र ने उसका पातिव्रत्य भंग किया। यथावकाश कुछ देर के बाद गौतम ऋषि खुद लौट के आए। तो जब गौतम ऋषि लौट के आए तो उसने आवाज दिया अहिल्या को, तो अहिल्या उस समय उस रूप बदले हुए इंद्र के साथ थी। उनका, अरे मेरे पति मेरे साथ में है, बाहर से पति की आवाज कैसे आ रही है। तो वो बाहर आ गए, देखा तो वहां पर भी गौतम ऋषि आ रहे हैं। तो गौतम ऋषि आते ही उनको समझ में आया, क्योंकि वो अंतर्ध्यानी थे, उनको समझ में आया कि इंद्र ने यहां पर आकर अपराध किया है। तो इंद्र जो है उनकी पवित्रता के सामने ना अपना बदला हुआ रूप टिका नहीं सके, वो उनकी दृष्टि इतनी पवित्र थी कि जैसे ही गौतम ऋषि ने उस बहुरूपिया गौतम ऋषि को देखा तो वो इंद्र अपने गौतम ऋषि का रूप को बनाए रखने में असफल रहे, वो रूप अपने आप नष्ट हो गया, इंद्र प्रकट हो गए उसके अंदर से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर गौतम ऋषि ने शाप दिया उनको, इंद्र को शाप दिया कि जिस आंखों के माध्यम से देखकर तुमने ये काम वासना प्रदीप्त की है, तुम्हारे शरीर पर 1000 आंखें हो जाएंगी। मतलब मैं जब बैठा हूं ना वहां पर भी आंखें होंगी सब जगह पर आंखें होंगी, एकदम कुरूप दिखाई पड़ेंगे। अच्छा शाप दिया तो इंद्र के तत्काल उनके शरीर में 1000 आंखें पैदा हो गई, मतलब छिद्र पैदा हो गए। हमारे पास 2 छिद्र है ना, ये 2 छिद्र की 2 आंखें, ऐसे 1000 छिद्र बन गए। और अहिल्या को शाप दिया कि तुम शिला बन जाओगी, पत्थर बन जाओगी। अभी आप कहेंगे उसका अहिल्या का दोष क्या था, आपका एकदम सिंपल प्रश्न आएगा ना, लेकिन शास्त्र में ऐसा लिखा है कुछ समय के बाद में इंद्र के बदले हुए रूप के द्वारा जो आया था उसका जो व्यवहार था उससे अहिल्या को समझ में आया था कि ये हमारे पति नहीं हैं। लेकिन इंद्र इतने सुंदर थे, ऋषि तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के पूरे उग्र तपस्वी थे, वो तो जैसे कामुक सौंदर्य होता है ना वैसा तो इंद्र ऋषि का नहीं था, लेकिन इंद्र तो देवता है, देवताओं के राजा है, परम सुंदर है वो। तो वो अपने मोह को रोक नहीं पाई, उसको मौका था जब समझ में आया तो उसको धुतकार देने का, लेकिन वो भी उसके साथ में बह गई। कुसंगति ऐसी होती है, वो कितना भी आप पावरफुल होंगे अगर कुसंगति करेंगे, आपकी शक्ति कुसंगति के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकती, आपको सत्संगति करनी पड़ेगी। सत्संग के प्रभाव से आप कुसंगति के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं, नहीं तो अंतर्ज्ञानी जो त्रिकालदर्शी गौतम ऋषि है वो जानते नहीं थे क्या कि मेरी पत्नी तो निष्पाप है, लेकिन उसके भी इतना सहभाग था, कुछ समय के लिए उसने सहभाग दिया इसलिए उसको भी पत्थर होना पड़ा। ऋषि मुनि अन्याय नहीं करते किसी के ऊपर, दोनों को पश्चाताप हो लेकिन फिर भी शाप तो भोगना ही पड़ा। फिर इंद्र भगवान बड़े तड़पे, भगवान विष्णु के पास गए, भगवान बचा लो। तो इंद्र ने, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको उपाय बताता हूँ, क्योंकि है तो भगवान का भक्त वो, लेकिन पाप तो जरूर करता है, पाप का फल भी भोगना पड़ता है, लेकिन भगवान का भक्त होने की वजह से पाप करने के बाद भी भगवान उनको पाप से बचाने के लिए उपाय बताते हैं। तो भगवान ने कहा कि आप डिंडीरव वन, लोअर दंड वन, पंडरपुर क्षेत्र तभी नहीं था नाम उसका, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, वहाँ जाओ और चंद्रभागा नदी में स्नान करने के पहले उपास करो, सूर्य भगवान की आराधना करो और चंद्रभागा में स्नान करो और तपस्या करो, ध्यान करो मेरा वहाँ जाकर, तो चंद्रभागा की कृपा से आपका ये पाप नष्ट हो जाएगा। इस तरह से इंद्र भगवान यहाँ पर आए, उन्होंने पश्चाताप दग्ध होकर प्रामाणिक भावना से यहाँ पर तपस्या किया है, सूर्यदेव की आराधना की है, सूर्य तीर्थ पर चंद्रभागा में स्नान किया है और ये जो व्यभिचार का पाप था उससे वो मुक्त हो गए हैं। और एक कथा थी वैसी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अभी हमको अच्छा लाइसेंस मिल गया, मुंबई में व्यभिचार कर सकते हैं, जब मौका मिलेगा तो पंडरपुर में आएंगे, चंद्रभागा में स्नान करके फ्री हो जाएंगे, वापस जाकर वहां पर जो करना है कर सकते हैं, हमको फॉर्मूला मिल गया। अभी प्रभु जी ने कथा में बताया था, परम फॉर्मूला मिल गया है, जितना जी भर के व्यभिचार करना है कर लो, यहां पर आके स्नान कर लो, सब फ्री हो जाएंगे। ऐसी भावना होगी तो फिर हमारा व्यभिचार के पाप से मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर हम ऐसे उपाय को पाप करने का लाइसेंस समझते हैं तो हमारे मति में कोई गड़बड़ है, उस मति को हम लोग भगवान कभी भी प्रतिसाद नहीं देंगे। तो ऐसे देखो, ये देवता लोगों ने कई बार ऐसे किया है। अभी चंद्र जो है, चंद्र देवता, उन सबके देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति है ना, जिसको हम गुरु के रूप में गुरुवार का नाम दिया है। वो बृहस्पति, ऐसे शास्त्र में लिखा है कि गुरु पत्नी पर कभी भी बुरी आंख से देखना नहीं चाहिए। अभी तो गुरु सब लोग अधिकतर सन्यासी होते हैं, पुराने जमाने में सभी गुरु जितने भी थे अधिकतर गृहस्थ थे। गौतम ऋषि आप देखिए, अगस्त ऋषि, जितना भी नाम लीजिए, सब ऋषि गृहस्थ थे और गुरु माता कहते थे। गुरु माता अपने शिष्यों को पुत्रों की तरह पालती थी। तो ऐसा होने पर भी चंद्र देवता बहुत सुंदर हैं, जैसे इंद्र हैं वैसे भी बहुत सुंदर हैं। हम लोग ना इनकी सौंदर्य का अंदाज लगा नहीं सकते हैं। हमारा सौंदर्य क्या है दुनिया का, मिस वर्ल्ड मिस्टर वर्ल्ड कुछ नहीं है, हमारा कोई दम नहीं उसके अंदर। लेकिन देवी देवताओं का एक जो कहते ना, अपने को उसका कर्ण का सौंदर्य भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो चंद्र देवता तो प्रधान देवताओं में है, बहुत सुंदर है। तो चंद्र देवता बृहस्पति की पत्नी के पास गए, वो भी आकर्षित हो गई और चंद्र भी आकर्षित हो गए और उन्होंने संबंध किया, व्यभिचार किया। तो बृहस्पति ने उनको शाप दिया कि तुम्हारा क्षय होगा, तुम्हें टीबी होगी, राज यक्ष्मा रोग होगा तुम्हारा। जिस सौंदर्य के बल पर तुमने ये व्यभिचार किया है, उस सौंदर्य तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, शरीर जो सौंदर्य संपन्न है नष्ट हो जाएगा वो। तो फिर पश्चाताप हुआ, जैसे पाप करते समय मजा आता है बहुत, उसके बाद जब दंड मिलता है तो पश्चाताप होता है। तो बृहस्पति के पास ही, अपने गुरु के पास ही शरण में गए, बोले महाराज बताइए आप क्या करें, माफी चाहता हूं आपसे, क्षमा चाहता हूं, इस पाप से मुक्त होना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि मेरा शाप जो है ना, वो क्षय होने का, वो नष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन आप सूर्यदेव के पास जाएंगे, दिंडरव वन में आएंगे, यहाँ पर तपस्या करेंगे, सूर्य की आराधना करेंगे, सूर्य को प्रसन्न करेंगे, चंद्रभागा में स्नान करेंगे, तो फिर क्षय तो होगा, लेकिन जब क्षय होकर आप नष्ट हो जाओगे तो वहां से पुनः वृद्धि होने की जो कला है वो आपको सूर्य भगवान देंगे। तो ये चंद्र भगवान यहाँ पर आए हैं, चंद्र देवता, उन्होंने जो कुछ बताया वो सब कुछ किया प्रामाणिक पश्चाताप की भावना से, ये भावना से नहीं, अच्छा फॉर्मूला मिला है, अगली बार भी करूँगा तो ये आऊँगा, तब बृहस्पति को मिलने नहीं जाऊँगा, उनका दिया हुआ फॉर्मूला अपनाऊँगा और ये अपना कार्य चालू रखूँगा, नहीं। उन्होंने यहाँ पर पश्चाताप किया है, चंद्रभागा में स्नान किया है और सूर्य को प्रसन्न करने के बाद सूर्य देवता ने उनको अमावस्या से पूर्णिमा तक शरीर की वृद्धि करने की कला दे दी है। इसलिए चंद्र ऐसे अकेले देवता है जो एक महीने में 15 दिन क्षय होते हैं और एक महीने में 15 दिन उनकी वृद्धि होती है, वो पूर्णिमा अमावस्या का खेल चलते रहता है। उसको देखकर हमको याद करना चाहिए ये ऐसे क्यों हो रहा है, इसके पीछे ये व्यभिचार की कहानी है, हमें भी वैसे ही होना पड़ेगा। चंद्र देवता होगा तो क्या हुआ, जीवन भर जब तक ब्रह्मांड है, जब तक ब्रह्मांड का जीवन काल है, जब तक उसकी आयु है, तब तक आपको ये दिखाई पड़ेगा कि चंद्र अस्त में जा रहा है, अमावस्या हो रही है, उसका पूर्णिमा हो रहा है, फिर उसकी अमावस्या हो रही है। कुछ सीखना चाहिए हमको, हर जगह देखकर कुछ सीखना चाहिए। तो ये चंद्रभागा के महात्म्य में आता है कि चंद्रभागा के संपर्क से ऐसे ऐसे घनीभूत पाप भी जो है वो नष्ट हो जाते हैं। हम जाएंगे हमारा पाप नष्ट करने के लिए, ये भाव से नहीं कि अभी दोबारा पाप करने के लिए मुक्त हो गए, हम पहले का स्टॉक हमने निकाल दिया, अभी स्लेट खाली हो गया अपना, और थोड़ा बहुत पाप कर सकते हैं, वापस आके स्नान करेंगे, हर साल में तो कैंप लगाते आ जाएंगे स्नान करेंगे, इसमें क्या है। ऐसे भाव से आएंगे, चंद्रभागा का आपके ऊपर परिणाम नहीं होगा, क्योंकि धाम के दश अपराध में एक छठवा अपराध यह है कि धाम की महिमा को काल्पनिक समझना और धाम की महिमा का दुरुपयोग करना अपने स्वार्थ के लिए, ऐसे करने से धाम की महिमा का परिणाम आपके ऊपर नहीं होगा। भगवान इतने बुद्धू नहीं है, वो सब हमारी मति को जानते हैं। प्रामाणिक जीव के लिए सब कुछ प्राप्त है, तो लुच्चा जीव है, कपटी जीव है, उसके लिए कुछ प्राप्त नहीं है। तो ये चंद्रभागा देवी भीमाशंकर जो पर्वत है, 4,300 फुट उसकी ऊंचाई है, वहां से इसका उगम होता है और वो कुछ किलोमीटर चल के यहाँ पर आती है, और आगे जाकर फिर यहाँ से बाहर जाकर यहाँ पर धर्मवीरा नदी को मिलती है, यहाँ पर नीरा नदी को मिलती है, आगे जाकर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी को मिलती है, फिर आगे गोदावरी को मिलती है, फिर समुद्र को प्राप्त हो जाती है, ऐसा उसका प्रवाह है। चंद्रभागा नाम क्यों पड़ा? जहाँ पर चंद्र ने तपस्या किया उस जगह वो गोलाकार हो गई, मानो पंडरपुर को अपनी गोद में ले रही हो, वहाँ पर वो दक्षिणाभिमुख भी हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब कोई नदी अपने प्रवाह से चलते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तो उसको दक्षिणाभिमुख कहते हैं, और जहाँ पर नदी, कोई भी नदी दक्षिण दिशा में घूम रही है, वो जगह श्राद्ध के लिए परम पवित्र, परम शक्तिशाली हो जाती है। इसलिए प्रभु रामचंद्र ने भी अपने पिता का श्राद्ध जो है वो राम कुंड में किया है, जहाँ पर गोदावरी नदी दक्षिणाभिमुख हो रही है, जो दक्षिणा टर्न कर रही है ना, वहीं पर उन्होंने श्राद्ध किया। तो ये जगह जो है श्राद्ध के लिए बहुत पर्याप्त है, और चंद्र ने वहाँ तपस्या किया था, इसलिए उसका चंद्रभागा यानी गोलाकार भाग हो गया, जहाँ चंद्र ने तपस्या किया था, इसलिए उसका नाम चंद्रभागा पड़ा। संत लोग क्या कहते हैं? माझी बहिण चंद्रभागा, करी तसे पाप भंगा, माझे माहेर पंडरी आहे भी वरी चातिरी। ये भाव लेकर संत लोग यहाँ पर आते हैं, दुरुपयोग करने के लिए नहीं आते। संतों का भाव स्वीकार करके हमको यहाँ पर आना चाहिए। संतों के भाव के साथ में अलाइन कर गए ना हम लोग, ऐसे एक रूप हो गए, तो धाम का जो लाभ उनको मिलता था उसका कुछ अंश तो मिलेगा जरूर हमको। इसलिए संतों की वाणी सुनना बहुत जरूरी है। हम हमारी वाणी सुना नहीं रहे, जो शास्त्र में लिखा है, जो भगवान ने लिखा है, भगवत वाणी संतों ने कहा है, वो सुना रहे हैं। तो मैं भी सुन रहा हूँ जब मैं कह रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं जब मैं कह रहा हूँ, तो दोनों को उसका लाभ हो रहा है, ताकि वो जो भाव जो है उसको हम पकड़ सकें, पकड़ के उसको आचरण में उतारेंगे तो हमारा पंडरपुर का धाम का वास सफल है। बोलो चंद्रभागा देवी की जय, श्री विट्ठल रखुमाई की जय, त्रिपुरारी शंकर भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।